ओम शांति। हम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें गाइड करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। कल परसों बाबा मुरली में कह रहे थे, तुम्हें कोई मनुष्य तो पढ़ा भी नहीं सकता, तुम्हें पढ़ाने के लिए स्वयं बाप को ही आना पड़ता है। क्यों क्यों हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता? कौन है आप सभी, आपसे पूछता हूं मैं, कौन है? हैं? इष्ट देवियां। अब सोचो, इस देवियों को कोई मनुष्य पढ़ा सकता है? लज्जा आ जाएगी पढ़ाने वाले को भी कि इन्हें हम क्या सिखाएंगे। हम सभी भगवान के स्टूडेंट, उसकी गाइडेंस पर चलने वाले, और उसने हमें ज्ञान दिया। कई लक्ष्य हैं बाबा के पास, उसने हमें ज्ञान दिया हमें संपूर्ण पावन बनाने के लिए, उसने हमें ज्ञान दिया कर्मातीत बनाने के लिए, उसने हमें ज्ञान दिया। अब सबसे बड़ी बात कि हमें संसार के काम आ जाएं, इतना महान बनाने के लिए। आगे चलकर सभी को ख्याल रहे, हमारी संपूर्ण सेवाएं दृष्टि से होंगी, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से होंगी, और जिसने जो बाबा से वरदान प्राप्त किए होंगे उनके द्वारा होगी। बोल भी सेवा के माध्यम हैं, लेकिन जिसके बोल वरदानी हो जाएंगे, जिसके बोल उसके अनुभवों से निकलेंगे, जिसके बोल आत्माओं के कष्ट मिटाने वाले होंगे, जिसके बोल सभी के विघ्न समाप्त करने वाले होंगे, ऐसे महावाक्य, जो आज का स्लोगन भी था, ऐसे महावाक्य संसार का कल्याण करेंगे। तो हमें श्रेष्ठ श्रीमत मिली है, भाग्यवान हैं हम सभी आत्माएं जिन्हें राह दिखा रहे हैं स्वयं भगवान। मनुष्यों की मत पर चलकर हम सब ने देख लिया, शास्त्र और गुरुओं की मत पर भी हजारों साल चले, और अपनी मत तो रोज सबके पास रहती है, लेकिन हमारी मत और श्रीमत समान हो जाए, अब इसकी जरूरत है। ये ऐसा टॉपिक है, इस पे आप भी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए मैं सूक्ष्म करना चाहता हूँ कुछ बातों को। हमारी मत और श्रीमत समान हो जाए, श्रीमत ही हमारी मत बन जाए। जो हमारी मत है वो वही हो जो श्रीमत है। ये बाबा का महावाक्य है कुछ समय पहले का। तो हम अब बाबा की मत को जीवन में इतना समा लें कि एक हो जाएं दोनों। हम जो बोलें वो श्रीमत ही हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ममा ने शिव बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ में इतना समा लिया था कि बाबा जो बोलते थे वो भी श्रीमत बन गई। और शिव बाबा ने कह दिया कि ब्रह्मा भी तुम्हें कोई मत दे उसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई गड़बड़ भी हो गई तो बाप उसको संभालेगा। अव्यक्त में बाबा ने इसका उत्तर दे दिया था, अव्यक्त होते ही। ये क्यों वचन दिया था कि ब्रह्मा की मत अगर कुछ गड़बड़ कर देती है तो मैं उसको संभालूंगा, क्योंकि ब्रह्मा की मत गड़बड़ कर ही नहीं सकती। वो आत्मा संपूर्ण सोल कॉन्शियसनेस में रहती है, उसकी मत संपूर्ण रूप से कल्याणकारी होगी। इसलिए जैसे ईश्वरीय मत का गायन है, वैसे ही ब्रह्मा की मत का भी बहुत गायन है। सबसे अधिक बुद्धिमान ब्रह्मा को ही माना जाता है। तो हम सभी अपने लिए कुछ कुछ जो मुख्य श्रीमते हैं उनको अपने जीवन का आधार बनाएं, और जो जीवन में कमजोरी अपने खुद के विचारों से या किसी की बातें सुनकर आ जाती हैं उसको छोड़ दें। मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई हमें कहे, मुझे भी कहते हैं लोग, आपको भी कहते होंगे कि भाई यज्ञ में पढ़े लिखों का बड़ा महत्व है, तुम पढ़े लिखे नहीं होंगे तुम्हारी कोई बोझ नहीं होगी। एक बहन MBA कर रही कन्या मेरे से पूछा, मैं MBA कर रही हूँ, मैं समर्पित होना चाहती हूँ। मैंने कहा तो समर्पित होने के लिए MBA की क्या जरूरत है? कि नहीं, डिग्री तो होनी चाहिए, नहीं तो हमें कौन पूछेगा। एक बहन MTech कर रही, MTech इंजीनियरिंग के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। मैंने उससे पूछा तुम्हें समर्पित होना है? मैंने उसे कहा, ऐसे ही कहा कि तुम MTech कर रही हो, बहुत बड़ी डिग्री है, तुम्हें बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, समर्पित होके क्या करोगी? नहीं, मुझे होना तो समर्पित है पर MTech भी करना है। क्यों? डिग्री होती है तो महत्व होता है। अब ये श्रीमत है, मनमत है या परमत है, आपसे ये प्रश्न है मेरा, सोच लें आप। हमारी दोनों दादियां हमारे सामने हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं? जानकी दादी तो हंसा करती, मुझे बाबा विदेश भेज रहा था, मैं सोच रही थी मुझे बिना पढ़ी लिखी को विदेश भेज रहा है और पढ़े लिखों को यहाँ रख रहा है, क्या प्रभु प्लानिंग है, सुनाती थी उन दिनों। अगर हम योग्य हैं, ध्यान से सुन लें, जो बहनें बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, नो डाउट पढ़े लिखों का अपना महत्व है, पर पढ़ाई देखिए, पढ़ाई क्या है। हमारे पास किचन में कई भाई MCOM किए हुए हैं, MMA हैं, इंजीनियर हैं, BCOM हैं, ग्रेजुएट कई सारे हैं। जब हमारा ज्ञान सरोवर बना तो मुझे एक लक्ष्य था कि मैं इनमें से कुछ भाइयों को ऐसी ट्रेनिंग दूं जो एक एक डिपार्टमेंट संभालें। तो मैंने सबसे पहले जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन था, MA MCOM ये सब था, उनको कहा एक एक डिपार्टमेंट तुम संभालो। वो घबरा गए, हम सेवा करेंगे लेकिन संभालेंगे नहीं। मैंने देखा ऐसे लोगों ने ज्यादा अच्छा संभाला जो 12वीं तक पढ़े थे। मैं देखता आया हूं एजुकेशन क्या है। ध्यान दें आप सभी जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आजकल की एजुकेशन एजुकेशन न रहकर इंफॉर्मेशन रह गई है, जस्ट जानकारी। लेकिन सच्ची एजुकेशन वही है जो मनुष्य के बुद्धि का विकास करे, जो मनुष्य के चरित्र का विकास करे, जो उसके विचारों को डिवाइन बनाए, जो उसके विचारों को महान बनाए। अगर कोई एजुकेशन, कोई डिग्री किसी मनुष्य के अंदर अहंकार को बढ़ा दे तो उसका अहंकार उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत अच्छी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सच्ची एजुकेशन मनुष्य को निरहंकारी बनाती है। हमारे संपूर्ण यज्ञ में दो चीजों का कंपटीशन चलता है, कुछ भाई बहने बहुत कम पढ़े लिखे और कुछ हाईली एजुकेटेड। मैं सबको साक्षी होकर देखता रहता हूँ, सेवा उनके द्वारा ही होती है जिनकी स्थिति महान है। केवल कंप्यूटर और टेलीविजन हमारा काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ये सबको ध्यान रखना है। नहीं तो बाबा क्यों कहता मुझे एक बात बाबा की बहुत बहुत अपील की, बहुत सुंदर लगी, आपको याद आ जाएगी, दो तीन साल पहले की बात। भक्त जब बाप को दुखी होकर पुकारते हैं, भक्त जब बहुत समस्याओं से परेशान होकर भगवान को पुकारते हैं, तो बाबा अपने बच्चों को याद करता है। सोचो, भक्त कुछ इच्छाएं लेकर शांति के लिए, उनके दुख समाप्त हो जाएं, भगवान को पुकारते हैं, और भगवान अपने कुछ बच्चों को याद करता है। क्यों? कि इन्हें सकास दो। बहुत सुंदर बात है ये। तब भी हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छी चर्चाएं की थी, तीन साल पहले की मुरली है। ये है असली सेवा। संसार को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है हमारे वाइब्रेशंस। और बाबा हम अब हमसे ये चाहता है, हम अपने तीसरे नेत्र को इतना सुंदर बनाएं कि एक स्थान पर बैठकर सारे संसार को दृष्टि दे सकें, उनको वाइब्रेशंस दे सकें, उनके दुख दर्द मिटा सकें। तैयार करें आप अपने को इस सेवा के लिए। जो ये मेहनत बाबा हमसे करा रहे हैं, ये बहुत थोड़े समय की और बची है। कुछ ही समय में ऐसा हो जाएगा कि हर सेंटर पर आने वालों की भीड़ होगी। 10-20 स्टूडेंट में हजारों आने लगेंगे, समस्याओं से तड़पते हुए लोग आएंगे आपके पास, और वो केवल ये चाहेंगे आप हमें दृष्टि दे दो, आप हमारे सिर पर अपना हाथ रख दो, आप तो पवित्र आत्माएं हैं, हमारे दुख दूर कर दो। वो ये कहेंगे हमें अपने सेंटर में 10 मिनट बैठने दो, हमारा चित्त शांत हो जाएगा, हम तो न मर रहे हैं न जी रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे हमें ऐसे वाइब्रेशंस दो हमारा शरीर ही छूट जाए, दुखों से इतने पीड़ित होंगे। ये होगी असली सेवा, जिसमें डिग्री काम नहीं करेंगी। बुद्धिमान वो है, एजुकेटेड वो है, शिक्षित वो है, पढ़े लिखे वो हैं जो श्रेष्ठ योगी बन जाएं, जो स्मृति स्वरूप बन जाएं, जो गहन चिंतक बन जाएं। आप सभी चिंतक बने, गहन चिंतन में ले चलें अपने को। मैं सभी बहनों को देखता हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है। क्यों गर्व होता है? क्योंकि मेरे पास रोज बहुत सारे फोन आते हैं। आजकल क्या 5 साल से आ रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं पूछते हैं। मैं देखता हूं उसमें कि आजकल के युवा वर्ग का कितना बुरा हाल है, और वो पीड़ित होते जा रहे हैं। जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि ये देव कुल की महान आत्माएं, ये वो आत्माएं जिन्होंने संसार की सभी इच्छाओं को त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के कार्यों में समर्पित कर दिया है, ये छोटी बात नहीं है। मैं उन सबको देखता हूं और आप सबको देखता हूं, तो मुझे सचमुच गर्व होता है कि ये हमारी छोटी बहनें सचमुच संसार में चमकते हुए सितारे हैं। आप सबको क्या करना है? अपने त्याग को स्वयं महत्व देकर, त्याग का बल तपस्या के बल में परिवर्तित करना है। एक बुद्धिमान मनुष्य को, एक पढ़े लिखे मनुष्य को ये गहन चिंतन करना चाहिए कि मैंने बहुत पढ़ लिख कर संसार को छोड़कर ईश्वरीय मार्ग अपना लिया है, अब इस मार्ग में मुझे परफेक्ट होना है। जो जीवन मैंने अपनाया है इसमें मुझे परफेक्ट होना है। इसमें आप दूसरों को नहीं देखेंगे। यहाँ काम करती है पर मत और मन मत, कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, मैं वो इस देवी हूँ जो सभी की समस्याओं को हल कर देती हूँ, मैं वो इस देवी हूँ जिसकी उपस्थिति का आभास होते ही सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, मैं वो इस देवी हूँ जिसका दर्शन करके सभी के चित्त शांत हो जाते हैं। इस स्वमान में जरा आ जाए, बहुत बहनों में जो इनसिक्योर फीलिंग रहती है, डर डर कहीं कल कुछ हो न जाए, क्योंकि होता रहता है, किसी का डर बिना मतलब का नहीं है, डर भी यथार्थ है क्योंकि होता रहता है, पर हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं कि डर हमसे डरने लगे, बनाएंगे? डर हमसे भयभीत होकर भाग जाए। और ये याद रखना है, जिसके सिर पर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है, जिसको स्वयं भगवान साथ दे रहा है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको इनसिक्योर फीलिंग की कोई गुंजाइश नहीं, उसके ये सोचने की कोई जरूरत नहीं कल मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। ध्यान देंगे आप इस बात पर, कहीं मेरे साथ कल ऐसा ना हो जाए, इस संकल्प को सदा के लिए छोड़ दें। हमने हाथ पकड़ा है सर्वशक्तिवान का, हमने शरण ली है उसकी, जिसे बढ़कर कोई नहीं है, हम अपने को बिल्कुल निश्चिंत कर दें। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएं। चिंतन करें आप इस बात पर, त्याग किया है, हमारा त्याग सफल हो जाए, हमारा त्याग निष्फल न जाए, त्याग किया है तो योगी बन जाएं। और याद रखें, जो योग युक्त आत्माएं हैं उनकी केयर तो स्वयं भगवान करते हैं, उनकी संभाल स्वयं बाबा करते हैं। जो योग युक्त रहते हैं वो तो जैसे बाबा के सम्मुख रहते हैं। मैं पुरुषार्थ की आपको एक दो बातें सुनाऊंगा, बहुत सुंदर जो हैं, और सभी उसको अपने जीवन का आधार बनाएं। मेरे पास बहुत बहनें ऐसी भी आती रही हैं आपके ग्रुप से, जो ये पूछती हैं कि हम सेवाओं में वृद्धि कैसे करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, जिस सेंटर में रौनक है बहुत ज्यादा, जहाँ भाई बहने बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की शोभा ही अलग होती है, बाबा भी उन्हें देखकर बहुत आनंदित होता है, और हम भी बहुत प्रसन्न रहते हैं कि हमने बाबा के लिए कुछ काम किया। तो पहली एक पुरुषार्थ की चीज, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है जो हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग ढूंढ ले। मैं आपको अपने दो अनुभव सुनाऊंगा और इस पर आप बहुत अच्छा चिंतन करना। मुझे ये बात बहुत पहले मिल गई थी अव्यक्त बाबा से, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ ले। आप सबको पता है, हम जब यज्ञ में आए, यज्ञ बहुत छोटा सा था, गरीब भी था, हमारी ड्यूटी किचन में लगी, ये तो प्रश्न ही नहीं था कि हम किचन की सेवा नहीं करें, क्योंकि समर्पित हो गए तो जो सेवा बाबा दे वो हमें करनी है। और पीछे हमें पता चला कि बाबा तो हमें ढूंढ रहा था, हम उसके काम आ गए, वो हमसे इतना खुश हो गया कि उसने हमें अनेक वरदान दे दिए। ये तो मेरी पर्सनल जीवन कहानी है जो मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, पर भगवान हमसे राजी हो गया क्योंकि हमने उसके कार्यों को सहज रूप से स्वीकार किया। तो 69 की बात है, मुझे एक संकल्प रहता था, तब तक हमारा म्यूजियम भी नहीं बना था अबू का, हमारे पास कहीं ऐसा चांस नहीं था कि हम किसी को ज्ञान सुना सकें, हमारे पांडव भवन में कोई बाहर का विजिटर आता नहीं था, तो मेरे पास एक बहुत सुंदर संकल्प हुआ, वो बाबा से आया। बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को एक शिव बाबा पर स्थिर कर दे। और मैंने इसको यूज किया और 69 पूरा गहन तपस्या के लिए मैंने अर्पित किया और लक्ष्य बनाया था तब मैंने कि बिल्कुल पर्सनल बात है कि अगली 18 जनवरी तक मैं भी संपूर्ण बन जाऊंगा, इतनी लगन थी तब। और उसके लिए पूरा जोर लगाया था और मैं बहुत संतुष्ट था उस पुरुषार्थ से। लेकिन बाबा ने फिर कुछ और बातें बताई। एक बार दादी थी, दादी प्रकाशमणि, तो सबको पिकनिक पे बहुत ले जाया करती थी। दादी में फैमिली फीलिंग देने का बहुत संस्कार था। थोड़ा भी एक दो दिन बचा तो कहेगी चलेंगे सब उस पहाड़ी पर पिकनिक करके आएंगे। तो सब पिकनिक करने जा रहे हैं तो चार लोगों को वहां छोड़ना था, उसमें एक मेरा भी नाम आया कि तुम्हें भी यहाँ रहना है। हम चार भाई वहां रहे, बाकी सब पिकनिक पे गए। तो देखो क्या हुआ, तीन भाई जो और रहे थे वह तो हो गए परेशान, देखा सब पिकनिक पे जा रहे हमें यहाँ छोड़ दिया है, नाराज हो गए। और मैं हो गया बहुत खुश। क्यों? ये संकल्प परिवर्तन की बात बता रहा हूँ केवल आपको। मैं बहुत खुश हुआ कि सब लोग तो पिकनिक करेंगे, खाए पिएंगे, और यहाँ मुझे पूरा एकांत है योग करने का। चार घंटे मिलेंगे, चार घंटे बाद वो सब आएंगे, चार घंटे में तो मेरा योग चार घंटे ही हो जाएगा, कोई नहीं है, संपूर्ण शांति है। तो वो तीनों उदास बैठे और मैं आनंदित होके घूम रहा, फर्स्ट क्लास योग कर लिया मैंने। ये मैंने आपको एक एटीट्यूड बताया, दृष्टिकोण, हमें ऐसे सोचना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज, मुझे किचन में भेजा गया और दीदी मनमोहिनी ने पूछा तुम किचन में चल सकोगे, ये 69 की बात है। मुझे ये पता नहीं था चल सकना और चलना ये क्या होता है। चल सकूंगा मैं देखता रहा दीदी को। दीदी ने कहा, उन्होंने समझ लिया कि मैं इसका मतलब नहीं जानता, उन्होंने कहा कि वहां संगठन होता है, टकराव तो नहीं होगा। मैंने दीदी को ऐसे ही कहा, दीदी मैं तो लड़ना जानता ही नहीं। तो ठीक है, मैं चला गया किचन में। अब जो एक अनुभव मैं सुंदर आपको सुनाना चाहता हूँ, जो हम सबके लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा है, जो मैंने भी सीखा था। बहुत लोग देखो सेवाओं में जाते हैं, आप बहनों की भी बात है, एक सेंटर में गए, नहीं अच्छा लगा भाई हमें चेंज करो, चेंज किया, दूसरे में गए वहां भी अच्छा नहीं लगा मुझे चेंज करो, फिर तीसरे में गए वहां भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि समस्या सेंटर की नहीं है, समस्या हमारे पुरुषार्थ की है। इसको हिंदी में कहते हैं पलायनवाद, एस्केप करना, भागना। तो मैंने सोचा, अरे देखो मुझसे भोजन बनाना तो आता नहीं था, कभी चावल कच्चे रख दिए, कभी दाल जला दी, आता कुछ नहीं था। भोली दादी होती थी वो सिखाती थी, तो सुनना पड़ता था ना। चावल कच्चे रह गए तो चार पांच लोग जरूर आके अच्छा अच्छा सुनाएंगे, अच्छा अच्छा, और कम से कम मुझे ये तो सुनाते थे, बस ऊपर रहता है, काम पे ध्यान ही नहीं देता। मैं सोचता था चलो इन्होंने एक तो महिमा की कि मैं ऊपर रहता हूँ। तो मैंने ये नहीं सोचा मैं किचन से पलायन कर जाऊं, छोड़ू ये ड्यूटी, यहाँ तो बहुत सुनना पड़ता है। मैंने थोड़ा ही कोई किचन के लिए जीवन दिया था, मुझे लोग कहते भी थे तुम और किचन में आ गए, बस यही काम करना, तुम्हें लकड़ी जलानी है। धुआं लगता था वहां, गर्मी लगती थी, मुंह काला हो जाता था धुएं और धूप, उससे जो राख उठती थी बहुत ज्यादा। यज्ञ छोटा सा था ना, कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। मैं हंस रहा था अपने भाइयों को, कल ऊपर बारिश हो रही है, फोग आई हुई है, तो हमारी लकड़ियां खुले में पड़ी होती थी, उसमें बारिश होती रहती थी, उसी को हमें जलाना होता था भोजन बनाने के लिए। अब आप सोचो 15 दिन से लकड़ियों पे बारिश हो रही है और हमें उन्हें जलाना है। हम इसको एंजॉय करते थे। तो वो बात ये है, मुझे बाबा की एक बात बहुत पक्की हो गई थी, ज्ञानी आत्मा वे हैं जो मान अपमान हार जीत सुख दुख सर्दी गर्मी में समान रहें। आप जानते हैं इस बात को, मुरलियों में आती है ये। तो मैं सोचता था ये लोग मुझे कुछ कुछ बोलते हैं तो मुझे अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है, न मुझे इन्हें जवाब देना है और न इनके शब्दों से डिस्टर्ब होना है। तो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी रही। तब मैं छोटा था, 20-21 साल का था, पर मैंने ये लक्ष्य बनाया, कोई मुझे बोल रहा है, मान लो दाल जल गई तो जरूर बोलेंगे ना। तो मैं ये भी समझता था कि जब मेरे से गलती हुई है तो दूसरे व्यक्ति बोलेंगे भी जरूर, तो मुझे सहन भी करना है, लेकिन मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है और न ये सोचना है कि मैं ये सेवा नहीं करूंगा। तो उसी चीज ने मुझे बना दिया बहुत शक्तिशाली, ये मैंने महसूस किया। मेरी तबीयत बिगड़ती थी क्योंकि आबू का पानी बहुत खराब, उन दिनों कच्चा पानी हम लोग पीते थे, सबके पेट बिगड़े रहते थे, किसी को बुखार होता था, पेट की तकलीफें होती थी, दर्द होते थे, ज्वाइंट पेन हो जाते थे बरसात में, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो हमें छुड़ाए कि तुम रेस्ट कर लो, बुखार है तो हमें भोजन बनाना है, दवाई कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, यज्ञ में पैसा नहीं जो हम पालनपुर जाना है वहां से दवाई खरीद के लाएं और हम अपना इलाज कराएं। तो बाबा कहता था तुम योग बल से अपने को ठीक करो। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि पैसा नहीं, साधन नहीं, डॉक्टर नहीं और बीमारी है, तो कैसे बाबा की मदद से बीमारियां ठीक होती हैं, उसके बहुत अच्छे अनुभव हो गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बहनें परेशान हो जाती हैं कि बीमार हम हो गए, कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमारा ठीक से इलाज नहीं करा रहा है, ये सबको होता है। लेकिन याद रखना है विपरीत परिस्थितियों में ही बाबा की मदद के सुंदर अनुभव होते हैं। अब हम साधनों के आधार पे अपने को ठीक चलाएं या परमात्मा अनुभवों से अपने खजाने भर लें, इस पे विचार करना है। यहाँ भी मन मत और श्रीमत की बात आ जाती है। मनुष्य अपने मन में विचार करेगा ये क्या है, हमने जीवन दिया, हमें कोई पूछता भी नहीं, हमारा कोई इलाज भी नहीं कराता, देखा हमारी सेवाओं में भी कोई नहीं, हमें बुखार होता था, हम डर से किसी को बताते भी नहीं थे, वो कहेंगे देखा इनको रोज रोज बुखार रहता है, और कोई हमारी मदद करे वो तो प्रश्न ही नहीं था। तो बाबा के सुंदर से सुंदर अनुभव होते थे। एक 69 का सबसे सुंदर अनुभव है, आप खूब हंसेंगे इस पर। मुझे बुखार रहता था, मैंने किसी को बताया नहीं था, 7 दिन हो गए बुखार रहते, दिन में किचन में आ जाते थे, गर्मी से बुखार उतर जाता था, शाम को फिर बुखार हो जाता था, रात को बुखार रहता था। संतरी दादी हमारे यहाँ होती थी, वो ध्यान में जाती थी, ध्यान में गई सवेरे और बाबा ने उसको दिखाया मुझे और कहा बच्चे को बुखार रहता है, इसे देसी घी का हलवा खिलाओ 7 दिन। देखो बुखार की दवाई देसी घी का हलवा, वो भी भगवान के द्वारा भेजी गई दवाई, कितना अच्छा होता है। तो कभी भी अपने जीवन में निराशा नहीं आनी है, जहां भी निराशा है वहां सोच लें हम ईश्वरीय मत से दूर हैं, मन मत पर है या परमत का कोई असर हमारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। अपने को आप बहुत स्ट्रांग बना दें, बहुत स्ट्रांग, और अब आने वाले समय के लिए अपने को तैयार करें। स्थूल सेवाओं से डरेंगी नहीं। एक बहन मेरे पास आई, कहा हमें तो योग का समय नहीं मिलता। मैंने कहा ऐसा क्या काम है सारा दिन, कि सेंटर है, हम दो बहनें हैं, मुझे तो सारा दिन दीवारें भी साफ करनी पड़ती हैं, पोछा भी लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि दीवार साफ करते हुए तो सबसे अच्छा योग लगेगा, लगेगा या नहीं, ये जो ऐसे काम हैं जिनमें हमें बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, उनको हम एंजॉय कर सकते हैं, उसमें योग बहुत अच्छा कर सकते हैं। परंतु अगर हम विचार करते रहे, तब देखें दूसरी स्थिति, एक बहन है पोछा लगा रही है और परेशान हो रही है, मैं बीए करके आई हूँ, बस पोछा लगाना जीवन है, पोछा भी लग रहा है, दुखी भी हो रही है, सफाई भी हो रही है, खुशी की सफाई भी हो रही है, इससे फायदा होगा। सीख लें सभी, ये यज्ञ सेवा भाग्यवान आत्माओं को मिलती है। सेवा भी हमारे घर की सेवा है, हम घर में झाड़ू लगाते हमें फील होता है कि हम नौकरी थोड़ा ही कर रहे हैं, ये यज्ञ सेवा है। इसके मास भी बहुत ज्यादा हैं। मुझे भोजन बनाने की सेवा में तब बहुत रुचि हुई थी जब मैंने 69 में ही बाबा की साकार मुरली में सुना, जिस दिन तुम्हें योग युक्त भोजन मिलने लगेगा तुम्हारी सेवाएं बहुत वृद्धि को पाएंगी। समझ लें आप इस कनेक्शन को, जिस सेंटर में योग युक्त भोजन बनता हो वहां की सेवा बहुत वृद्धि को पाती है। ये बाबा का महावाक्य था। तो भगवान जो कुछ बोलता है वो संपूर्ण सत्य है। जो बहने यज्ञ की बहुत सेवा करती हैं अपने सेंटर्स की, उन्हें उसका आनंद लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए दूसरी बहन पढ़ी लिखी है उसका बड़ा मान है, मेरा तो कहीं मान भी नहीं नाम भी नहीं है, ये सोच सोच के अपनी खुशी को नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह आप जान लें, आप चाहे घर में झाड़ू लगाने की सेवा करती हैं, अगर आप योग युक्त हैं तो एक दिन आएगा वर्ल्ड की स्टेज पर आप ही चमकेंगी, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अब ऐसा समय आ रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि हार्डली 5 साल हैं, योगी आत्माएं विश्व की स्टेज पर आ जाएंगी। जो योग युक्त हैं उनके द्वारा संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि ऐसा समय आएगा हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकेंगे, बाहर के लोग भी हमारे पास नहीं आ सकेंगे ज्ञान लेने, हमें एक स्थान पर बैठकर ही संसार को वाइब्रेशंस देने होंगे। इसलिए अपने मन में जो भी, जिसके मन में उदासी हो, हीन भावनाएं हो कि हमारा जीवन सफल नहीं हो रहा है, वो इसे बाहर निकल जाएं, आनंद लें प्रभु मिलन का, बहुत बड़ी चीज मिली है, आनंद लें ज्ञान चिंतन का, जीवन से अकेलापन भी समाप्त हो जाएगा और यदि कहीं टकराव होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। सेवाओं की वृद्धि, मैं एक तो अनुभव सुनाना चाहता हूं, सच्चे अनुभव हैं, अभी अभी के हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर बना है साउथ में, उन्होंने अपना सेंटर कैसे बनाया देखो, बहन वो बहुत योग्य है, सेंटर के पास ही उन्होंने एक पंडव भवन बनाया हुआ है जिसमें 30 कुमार रहते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे हैं सब, 2 उन्होंने कुमार रख लिए हैं, सैलरी पे रख लिए, उन्हें पैसा देते हैं, वो सारा घर संभालते हैं, भोजन बना देते हैं। इनका सेंटर बनना था बहुत बड़ा, 3 करोड़ लगते थे उसमें, किसी ने भी इनको मदद देने के लिए मना कर दिया, कैसे करें। तो मैंने एक छोटी सी बात सजेस्ट की, मैं भी एक प्रयोग करना चाहता था, कई जगह मैंने छोटे छोटे कराए थे कि तुम सवेरे उठकर 4 बजे बाबा को भोग लगाओ रोज कुछ दिन। मैं तो भूल गया फिर ये बात उन्हें कह के, मैं उधर गया भट्टी के लिए, तो बहनें सब आई और क्या हुआ, 30 वो कुमार और ये 4-5 बहनें रोज 3 बजे उठी सवेरे, और शायद इन्होंने 3:30 ही बाबा को भोग लगाया रोज, और इनका करोड़ों का सेंटर आराम से बन गया, कोई कठिनाई नहीं हुई इनको। एक हंसी की बात सुनाऊं आपको, अभी वहां की तीन चार बहनें आई, हो सकता है भट्टी में बैठी हो, वो मुझे अनुभव सुनाया कि हमें भोग का इतना चस्का लग गया, चस्का, तो हमने एक दिन बाबा को फलों का भोग लगाया, तो सारा दिन सेंटर में फलों की टोकरियां आती रही। दूसरे दिन सब्जियों का भोग लगा दिया तो थैले भर भर के सब्जी आते रहे। तीसरे दिन ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया तो ड्राई फ्रूट आते रहे सारा दिन। अभी इन्हें लालच हो गया, चौथे दिन सोने की अंगूठी रख दी भोग में, तो सोना आता रहा सारा दिन। फिर मेरे से पूछा, मैंने कहा आप ज्यादा नहीं लालच, ये बस यही पूरा हो गया। अब उन्होंने एक दूसरा शुरू किया कि जिन माताओं के घरों में समस्याएं हैं, कोई भी बच्चों की, पति की, काम धंधे की, उन सब से घरों में भोग लगवाना शुरू किया। और साथ साथ दिन भोग लगाने से माताओं को अनुभव हुआ कि उनकी समस्याएं समाप्त हो गई। तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, सभी आप अपनी शक्ति को पहचाने। आप सबने ये पवित्र जीवन अपनाया है, हमारी पवित्रता संसार के लिए लाइट का काम करती है, हमें पता नहीं चलता। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति को पावन करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। एक प्रश्न है सभी से, मैंने आपको एक बात कही, ये बाबा ने मुरलियों में कह दी है, बाबा अपने महान आत्माओं को कुछ ही समय में विश्व की स्टेज पर खड़ा कर देगा। आप में से कौन कौन ये पार्ट प्ले करना चाहेंगी? ठीक है, बहुत अच्छा, सोच लो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब कोई महान पार्ट प्ले करना होता है तो अपना लेवल भी उठाना पड़ता है ऊंचा। इसलिए सभी बहनों के लिए मेरी एक शुभ राय है, सफल टीचर वही है जिसका योग कम से कम 4 घंटे रोज अवश्य हो। इसको आप कर्म योग बनाएं, किसी की भी बात सुनकर अपने जीवन की दिशा को न बदलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों में ज्यादा रहना, इसकी सुनना उसकी सुनना और इससे बाबा की बातें भूल जाना, ये न हो। हमारे जीवन का आधार केवल ईश्वरीय ज्ञान है, दूसरों की बातें नहीं। अगर आप अपनी भंडारी भी भरपूर करना चाहते हैं तो योग बल का प्रयोग करें। अगर आप अपनी सेवा में बहुत तीव्र वृद्धि चाहते हैं तो योग बल का प्रयोग करें। मुझे एक बहन की बात सुनकर बहुत आनंद आया, बैठी होंगी यहाँ, छोटी हैं, मेरे पास आई बाबा के लास्ट टर्न में, कहा मुझे बहुत तेज प्रेरणा आ रही है कि 2 साल में मुझे 1100 स्टूडेंट तैयार करने हैं, 1100। मैंने उसे पूछा 1100 तुम्हें ये संख्या कैसे आई? कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे 2 साल में 1100 स्टूडेंट तैयार करने हैं। दिल्ली के पास मुझे भेजा जा रहा है कहीं, छोटी सा 2-4 साल से सेंटरों में है, तो क्या करूं? तो मैंने 2-4 बातें उन्हें सुनाई, सेवाओं की वृद्धि कैसे होती है, पालना से होती है, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से होती है, मुरली भी हम सुनाते हैं तो उसमें कितना रस भरते हैं, कोर्स देते हैं तो उसको कितना आकर्षक बनाते हैं, या रटा रटा कोर्स दे देते हैं, जो सुनाया था वही हम भी सुना दें। इन सब पे हमारी सेवा डिपेंड करती है। हम ऐसा भी कोर्स दे सकते हैं कि जिसको कोर्स दें वो बाबा का बच्चा बन ही जाए, भले ही धारणाओं की बात है, लेकिन कम से कम 50% आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाएं, ऐसा हम कोर्स दे सकते हैं। लेकिन मैंने उनको एक योग की विधि सजेस्ट की, क्योंकि आप 2500 बहनें यहाँ बैठी हैं, अपने अपने सेंटर में इस योग की विधि को आप प्रयोग कर लें तो आपकी सेवाओं की वृद्धि सहज हो जाएगी। बहुत सहज विधि है, 21 दिन की योग भट्टी, नोट कर लें आप। मैं स्वमान कुछ लिखाता हूँ इसके बारे में, 1 घंटा रोज करेंगे, शाम के टाइम कर लें, अमृत वेला करने के बाद कोई भी टाइम कर लें, 5 से 6 भी कर सकते हैं, 6 से 7 भी कर सकते हैं, इवनिंग दोपहर कभी भी 1 घंटा, लेकिन 21 दिन मिस ना हो। स्वमान लेंगे सेवाओं के, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ये 4 स्वमान याद करके 1 घंटा योग करें। अगर आप अकेले हैं कहीं तो अकेली भी कर सकती हैं, 2-3 बहने हैं सब करें, 5 का ग्रुप बना लें और अच्छा, किसी की बहुत अच्छी सेवा है 8 का ग्रुप बना दें, लेकिन कोई भी आत्मा मिस न करे। 4 स्वमान से योग करेंगे 1 घंटा रोज, योग बहुत अच्छा होना चाहिए। और योग के बाद आत्माओं का आह्वान करो। एक बहन बोले बाकी सब करें या सब एक साथ करें, जैसे हमारे 4 ओर देवकुल की आत्माएं हैं, हम उन्हें बुलाएंगे, हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ, तुम्हारा शिव बाबा तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, जिसको तुम आज तक बुलाते थे वो अब तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, वो तुम्हें मनुष्य देवता बनाने के लिए आ गया है, तुम भी आ जाओ, जिससे तुम मिलना चाहते थे अब वो तुमसे मिलना चाहता है, आ जाओ। तो देवकुल की आत्माओं को आकर्षण होने लगेगा, 7 दिन के बाद ही उन्हें खिंचाव होगी कि चलें, ये सेवा बहुत अच्छी होगी, इससे आप वृद्धि को पा कर सकते हैं अपनी सेवा में। उस बहन को मैंने कहा अगर आपको इतनी लगन है तो 1 मास में 21 दिन की भट्टी कर लो, 2 मास में फिर करो, 2 साल तक लगातार करो, योग होगा अपना। 2 मास सेवा करके उसने मुझे फोन किया कि हमारे स्टूडेंट 128 हो गए हैं, कितनी अच्छी बात है। बैठी होंगी यहाँ, मैं पूछूंगा नहीं, ये सेवा वृद्धि का बहुत अच्छा तरीका है। वहाँ के भाई आए 2, जो मुख्य भाई हैं जिन्होंने सेंटर खोला था, उन्होंने मुझे बताया कि भाई उस बहन को तो सचमुच इतनी लगन है कि वो सेवाओं की बहुत वृद्धि करेगी, उसके द्वारा होगी। इसमें अपनी स्थिति का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो बड़ी बहने हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, उन्हें छोटों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं यज्ञ सेवा क्यों करूं, मुझे तो कंप्यूटर का ज्ञान है ना, मैं यज्ञ सेवा क्यों करूं। नहीं, यज्ञ सेवा में भी सहयोग करना आवश्यक है। मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊं, जब केवल पांडव भवन था, बात 90 के आसपास की है, दादी ने हमें कहा कि दादी को एक बात अच्छी नहीं लगती कि किचन में नौकर लोग आके सफाई करें, दादी की इच्छा है आप सब लोग सफाई करो। हमने कहा हाँ कर देंगे दादी। तो आज जो आप सबके सामने सीनियर भाई हैं, वो सब हम एक साथ किचन में थे, रामनाथ भाई, आतम भाई, रामलोचन भाई, मैं और 2-3 और थे। हम सब 11:30 बजे किचन का काम पूरा हो और 5 मिलकर एक साथ झाड़ू लें और पूरे किचन की धुलाई सफाई करें, और उसमें इतना हम आनंदित होते थे कि सारी थकान मिट जाती थी। एक दूसरे के ऊपर पानी भी छिड़क देते थे, खूब खेलते थे उसमें, और किचन की सफाई कर, किचन में रंग होता था, 3 किचन थे पांडवन में, रंग कटते थे वो भी हम कर देते थे 2-3 दिन में। तो देखिए, सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता। ये भगवान के यज्ञ की सेवा है, उसके यज्ञ को संभालने वाले उसकी नजरों में रहते हैं, उसके प्यार के पात्र बन जाते हैं। इसलिए जो पढ़े लिखी बहने हैं उन्हें यज्ञ सेवा पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, महत्व दें उसे। इससे एक सुंदर आदर्श हम आने वाली बहनों के लिए प्रस्तुत करेंगे, और जो छोटी बहनें हैं या जो कम पढ़ी लिखी हैं उन्हें अपने जीवन में निराशा भी नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंचार्ज बहनें हों, जो पढ़ी लिखी बहनें हों, वो अपने छोटे साथियों को भी उतने ही उमंग उत्साह में रखें, प्यार दें। नहीं तो आप सबने एक बात सुनी होगी, एक मास पहले बाबा की मुरली में बहुत हंसी आई हमें वो सुनकर कि कुछ देवियों के मंदिरों में पुजारी नहीं होते। बाबा ने उत्तर दिया, क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। ताली बजा रही बहने, चलो बजा लो। बहुत हंसे इस बात से कि देखो बाबा कितने हंसी में रहस्य बता देता है कि जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते। कि उन पे पानी डाल दें, उन्हें नहला दें, पूजा कर दें, तिलक लगा दें, होते ही नहीं। अब कुछ इम्पोर्टेंट श्रीमत जिनसे हमारा जीवन महान बन जाए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनका सुख मुझे बहुत मिल रहा है आजकल, मैं वही कुछ थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगा। पांच स्वरूपों का अभ्यास, एक सुंदर श्रीमत, स्वदर्शन चक्रधारी होने की, हमें महान बनाने के लिए, माया को नष्ट कराने के लिए बाबा ने ये बहुत सुंदर कला हमें सिखाई है। सभी इस पर ध्यान दें, कमेंट्री तैयार करें अपनी अपनी। कमेंट्री का अर्थ है कुछ संकल्प। हम देवयुग की आत्माएं हैं, आदि स्वरूप, संकल्प करें ताकि हम संकल्प करते करते पहले जन्म की फीलिंग में आ जाएं। एक सजेशन और है सभी बहनों को, आप जानते हैं यदि आप स्टूडेंट्स को कहो कि आधा घंटा आकर योग करना तो सब लोग भारी होते हैं, योग करना बड़ा भारी काम, आते नहीं है। आप एक काम करेंगे, मुरली के बाद 15 मिनट से शुरू करो, कमेंट्री से सबको योग कराओ। मैं एक सेंटर का अनुभव सुनाता हूं केवल। वहां एक भाई रहते हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, अब रिटायर हुए हैं। उन्होंने अभी अभी मुझे सुनाया कि मैंने खुद कमेंट्री से योग करना शुरू कराया। बहनें खुश हो गई कि हाँ बहुत अच्छी बात है। पहले दिन क्लास होने के बाद 10 लोग ठहरे योग करने के लिए, हमने 15 मिनट योग कराया। दूसरे दिन 15 लोग ठहरे, टाइम बढ़ा दिया, 20 मिनट तक योग कराया। कराते कराते 8 से 9 बजे तक एक घंटा योग कराने लगे और 50 भाई बहने ठहरने लगे। जिनके पास टाइम नहीं होता था वो एक घंटा देने लगे योग के लिए। कहा हमारे सेंटर में रौनक हो गई। क्लास के बाद कोई बात करते ही नहीं, व्यर्थ बातें होती नहीं, सुंदर माहौल बन गया है। आप सब भी ये करें, चाहे क्लास से पहले, मुरली से पहले, चाहे मुरली के बाद, कमेंट्री से योग कराएं। ऐसे नहीं चलो भाई बैठो योग कर लो। आप सब अच्छी तरह जानते हैं किसका कितना योग लगता है, बाहर से आने वाले भाई बहनों का। योग तो एक बहुत सूक्ष्म विद्या है। जब तक हम संकल्प अच्छे अच्छे उनको नहीं देंगे तब तक उनका योग होगा नहीं। और बहुत सुंदर बात है, जब हम कमेंट्री देंगे मान लो हमने एक छोटी सी बात बोली, चलो सभी आत्मा समझो अपने को, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठे, छोटी सी बात है ना, तो सभी आत्मा बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और इसको बाबा कहते हैं सभी एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा। आप लंबी चौड़ी कमेंट्री तैयार न करो, केवल 10 पॉइंट्स लिख लो और उन्हें बोल दिया एक एक लाइन कि आप 3 मिनट के लिए सब ये अभ्यास करेंगे। 3 मिनट किया, फिर अब 3 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे। तो पहला बहुत अच्छा अभ्यास 5 स्वरूपों का, ये आत्मा को बहुत आनंदित करने वाला है, हमारी बुद्धि को एकाग्र करने वाला है। सब ये अनुभव करेंगे, हमारी बुद्धि से लंबे समय तक एकाग्र होगी। दूसरी बहुत अच्छी बात देखिए, श्रीमत हमें बाबा की मुरलियों से मिलती हैं, रोज सवेरे कम से कम एक बार, शाम को भी हो तो बहुत अच्छा। सूक्ष्म लोक में हमें बाप दादा से मिलन का अच्छा अनुभव करना है, बिल्कुल हम ले चले अपने को सूक्ष्म लोक में, बाप दादा को सामने देखें, बाबा से दृष्टि लें, बाबा से मिलन करें। बाबा ने पिछले सीजन में बहुत सुंदर बात कही, रोज बाबा से सफलता का वरदान लो। याद हो आपको तमिलनाडु के ग्रुप से जब बाबा ने ग्रुप उठाया यहाँ, तो उन्हें ये बात कही थी, जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हो तो बाप से सफलता का वरदान लेकर शुरू करो। आप इसकी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दो, आप किसी को कोर्स देने जा रही हैं, आप कहीं भाषण के लिए जा रही हैं, आप स्कूल कॉलेजों में कोई प्रोग्राम देने जा रही हैं, बाबा के रूम में बैठो, बाबा से सफलता का वरदान लो। कैसे? सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे, अभ्यास करेंगे, बाप दादा सामने है, मस्तक पर तिलक लगाते हैं और वरदान देते हैं, बच्चे सफलता मूर्त भव, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर आप सेवा पर जाओ और देखो क्या होता है, ये रोज करना है। तो एक बार प्रभु मिलन का सुखद अनुभव रोज करना है। तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अनुभव देती है, टीचर्स बहनों को बाबा ने कहा है, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। प्रैक्टिस शुरू करें आप, एक जगह बैठकर, मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देवी हूँ, जैसे सारे संसार को दृष्टि दे रहे हैं। कुछ समझ में ना आए तो अपने सामने विश्व का गोला देखो, उसको दृष्टि दो, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो मैं आप सभी से कहूंगा, अपने जीवन को स्वयं वैल्यू देंगे, बहुत मूल्यवान है हमारा जीवन, योग भी बढ़ाएंगे, चिंतन बढ़ाएंगे। अब कोर्स करने की ऐसी कला आप सब विकसित करें कि थोड़े समय में सुंदर अनुभव करा सकें, क्योंकि समय ऐसा आएगा, 1 मिनट में आत्मा का ज्ञान देना होगा, 1 मिनट, और उसमें इतना ही हम कहेंगे, तुम ये देह नहीं हो, ज्योति आत्मा हो, यहाँ हो, बन जाओ आत्मा, और दृष्टि उनको देंगे, वो आत्मा हो जाएंगे। तो ज्ञान के चिंतन के द्वारा ज्ञान को सार बनाते चलें। योग का चार्ट सभी बहनों का 4 घंटे से ज्यादा होना ही चाहिए, पसंद है? बोलो, कर सकते हैं? जीवन सफल हो जाएगा, जो भी जीवन में निराशाएं आती हैं, मैं सब जानता हूं, जो भी निगेटिविटी आती है, अकेलापन होता है, इनसिक्योरिटी होती है, सब समाप्त हो जाएगी। ये जीवन जीने को मन करेगा, अपने जीवन को खुद वैल्यू दें, ये बात पक्की याद कर लें। तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है और एक एक संकल्प बहुत महान है। जो इस बात को पकड़ ले जीवन में, एक एक संकल्प महान, एक एक सेकंड मूल्यवान, ये बाबा के महावाक्य हैं, उसका जीवन सचमुच संसार के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। तो आने वाला समय हम सभी महान आत्माओं की इंतजार कर रहा है। आप अपने को साधारण न समझना, भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्माएं हो। भूल जाओ अगर आप अपने को ये सोचती हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझसे भाषण करना नहीं आता, आपसे कुछ नहीं आता हो, योग लगाना आता हो, आप सबसे महान बन सकते हैं, ये पक्का कर दें। बहुत सुंदर बात है, ये समय योगियों का आ रहा है। ये बात आज से मेरी आप याद रखना, आने वाला समय योगियों का होगा। इसलिए अपने को योगी बनाना है। गीता में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है, अर्जुन को बहुत कुछ समझा के कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा, तो योगी बन, योगी ही मुझे बहुत प्रिय हैं, योगी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बाबा भी योगियों को बहुत प्यार करता है, और एक सेंटर में अगर एक भी आत्मा योगयुक्त होती है तो सेंटर के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होंगे और वो सेंटर लाइट हाउस बन जाएगा। लास्ट बात कहता हूँ आपको, आप सभी को अपने अपने सेंटर्स को महान तीर्थ बनाना है और अपने जीवन को भी तीर्थ बनाना है। हम चलते फिरते तीर्थ बन जाएं, हमारा सेवा स्थान महान तीर्थ बन जाए, जहाँ से संसार को लाइट मिले, जहाँ से संसार को सत्य ज्ञान मिले, जहाँ से संसार को चैन मिले, वरदान मिले। तो मेरी शुभ भावना है आप सभी बहनें इस संसार की स्टेज पर चमको। मुझे कभी बचपन में एक स्लोगन बहुत याद रहता था, जैसे बाबा कह रहा है, जैसे मैं चमकता हूँ परम धाम में, तुम चमको इस जहान में। तो आप सब बहने इस जहान में सूरज की तरह चमकने लगो और संसार को सब कुछ देने वाले बन जाओ। यही शुभ भावनाएं हैं, यही ईश्वरीय आज्ञा है। ओम शांति।